हरे हरे। तो शंकर जी उठ के चले गए और इसने बायकाट कर दिया, यज्ञ बंद हो गए। शंकर को कोई भाग नहीं रखे तो कोई यज्ञ न करे, डर के मारे यज्ञ न करे तो न कोई कहीं बरसात हो तो सब लोग दुखी हो गए। तो दक्ष ने कहा क्यों यज्ञ नहीं कर रहे हो, मैं यज्ञ करता हूं और शंकर को नहीं बुलाऊंगा। और दूसरे यज्ञ का अनुष्ठान उसने गंगा जी के तट के ऊपर कनखल में किया जो हरिद्वार के पास में है। अब कैलाश पर्वत के ऊपर कैलाश शंकर जी बैठे हैं। हम इस प्रसंग को जब कहते हैं, अभी तो समय नहीं है, कहते हैं भगवान शंकर की शिक्षाएं। पहली शिक्षा ये है कि शंकर जी का अपमान किया सुसर ने, लेकिन शंकर जी ने अपनी पति को पत्नी को बताया नहीं सती को कि मेरा अपमान हुआ है। ये शंकर जी की गृहस्थों को पहली शिक्षा है। सुसर वालों से, साले से, सुसर से लड़के आओ, सास से तो पत्नी को कभी नहीं बताना, क्योंकि उनके मन का भाव अपने पिता माता और भाइयों के प्रति ज्यादा होता है। घर में झगड़ा न करना हो तो ये बात अपने पास ही रखा करो। वैसे भी शंकर जी की गृहस्थी को देखो कैसी है। स्वयं शंकर चढ़ते हैं बैल के ऊपर, पत्नी पार्वती चढ़ती है शेर के ऊपर। अब दोनों घर में पार्किंग कैसे करेंगे, शेर बैल को खाएगा कि नहीं खाएगा। अब एक बेटा गणेश चढ़ के आएगा चूहे के ऊपर और चूहे को शंकर के गले में पड़ा है, सांप खा जाएगा, अब चूहा कहाँ खड़ा हो। तब दूसरा बेटा स्कंद आएगा मयूर के ऊपर चढ़ के और अभी जो सांप भोलेनाथ के गले में वो भाग जाएगा। अब इतने सारे झमेलों के बीच में शंकर कहता है ग्रस्त में रहोगे तो ऐसी परेशानियां सदा बनी रहेंगी, इसलिए हरि कथा करो, हरि कीर्तन करो तो ये सांप दुख होते हुए भी सुखी रह सकते। तो ये शंकर जी की गृहस्थों को अद्भुत जो है शिक्षा है। अब शंकर जी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन पार्वती बाहर खड़ी थी, देखा विमानों के अंदर देवता जा रहे हैं, उनकी पत्नियां जा रही हैं, ऋषि और ऋषियों की पत्नियां जा रही हैं। तो सती बाहर निकल के पूछती है बहन कहाँ जा रही हो, क्योंकि स्त्रियों का ये स्वभाव है कहीं से कोई शोभा यात्रा निकली नहीं घर से बाहर उठ के पूछेंगे कौन है, कहाँ जा रहा है, क्या पहन के जा रहा है, कौन सा उत्सव है, ये बेचारों का स्वभाव है। तो सती अपने स्वभाव से पूछ रही थी तो ऋषि पत्नियां कहती हैं बहन दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं कनखल में, सबको निमंत्रण है। सती ने कहा मेरे पिता का यज्ञ है, हम क्यों नहीं जाएंगे। आके कहती है आपका ससुर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है शंकर जी, हमको तो वहां जाना चाहिए, हमारी बहनें आएंगी, हमारी बहनों के बच्चे आएंगे, सबसे मिलने का सौभाग्य है, माता देखे को बहुत समय हुआ। शंकर जी ने कहा देवी जहां निमंत्रण नहीं आए वहां नहीं जाना चाहिए। तो सती कहती है निमंत्रण नहीं आया तो नहीं जाना चाहिए, अपने पिता के घर में मंदिर में गुरु के घर में निमंत्रण की क्या आवश्यकता है, वो तो बगैर निमंत्रण के जा सकते हैं। अच्छा लेकिन जो जानबूझ के निमंत्रण ना भेजे तो फिर जाने से अपमान होता है, या हमको आपके पिता ने नहीं बुलाया है और जाएंगे तो अपमान होगा और अपमान मृत्यु से ज्यादा भयानक होता है। वैसे शंकर जी ने सती का मन से परित्याग उस दिन कर दिया था जिस दिन सती राम जी को विलाप करते हुए देखा सीता के लिए, तब सती परीक्षा लेने के लिए सीता बन के चली गई। राम जी ने प्रणाम करके कहा कि सती कहाँ है शंकर जी, तो सती को बड़ी लज्जा आई और शंकर जी ने ध्यान में देखा कि मेरे इष्ट की परीक्षा लेने गई और यहाँ सीता मेरी आराध्य का रूप धारण कर लिया। अब वो इसके साथ मन से तो पहले से वैराग हो ही गया था, तो अब सती के शरीर त्यागना अनिवार्य था। अब सती आज शंकर जी बोला नहीं जाना चाहिए। अब यहां लिखा है भागवत में कि सती की आंखों से आग उगलने लगी। तब दूसरी शिक्षा है पत्नी अगर मायके जाने की बात करे तो ना नहीं करना, नहीं तो भस्म कर दे, ऐसा पार्वती के अंदर दिखाई दिया। शंकर जी ने आंखें बंद करके देखा कि ये को इसका शरीर तो छूटेगा, ये तो अब रहेगी नहीं, इसका प्राण शरीर छूटने वाला है, लेकिन अच्छा है मरे तो अपने बाप के घर में जाके मरे, मेरे घर में काय के लिए प्राण था, ये मरे इधर मेरे पास क्यों। बोले ऐसे शंकर जी ने क्यों सोचा, बोले शंकर जी तो बहुत बड़े जानने वाले सब शास्त्रों के, वो गीता के श्लोक को तो अच्छी तरह से कंठ करके बैठे है कि अंत गति सो मति, अगर यहां मरेगी तो याद करेगी दक्ष को और अपनी मां बहन को, फिर उसके घर में जन्म लेगी, फिर दुख भोगेगी, उधर जाके मरेगी तो मेरे को याद करेगी, वापस मेरी पत्नी बन के आएगी पार्वती, तो अब ऐसा काम करना चाहिए कि इसको वापस मेरे पास आए। सती यहां से सज धज के वीणा उठा के बहुत श्रृंगार का सामान लेके और बहुत से गण नंदी आदि साथ हैं और यज्ञशाला में जैसे प्रवेश किया है, माँ ने कहा बेटी आओ, लेकिन किसी और ने स्वागत नहीं किया, पिताजी ने देखा तक नहीं। और सती ने तत्काल यज्ञशाला में नजर डाली और शंकर जी का स्थान नहीं देखा, तो एकदम यहाँ भागवत में लिखा है कि स्त्री को नारी को भगवान ने सामने वाले के मन के भाव को परखने की बहुत बड़ा सूक्ष्म बुद्धि दी। सामने वाले के मन में क्या है उसको पता लग जाता है। उसने देखा कि यह शंकर जी का अपमान किया गया है, बोला जिस शंकर जी की प्रार्थना ब्रह्मा आदि देवता करते हैं, महादेव है, उसका यह यज्ञ में स्थान न रख के आपने अपमान किया है, और मैं आपकी पुत्री वापस जाऊं और मुझे शंकर जी दक्षिणी कहेगा, मुझे लज्जा आएगी, आपसे दिए हुए शरीर को मैं रख नहीं सकती हूँ। ऐसे करके सती बैठी और ज्ञान अग्नि से अपनी अग्नि प्रकट करके और सती ने शरीर त्याग दिया। और जो उस वक्त आए थे सती के साथ शंकर जी के गण, उन्होंने वहां उपद्रव मचाया यज्ञ के अंदर, तो भृगुवर्षी ऋषियों ने यज्ञ के अंदर आहुति डाल के ऋभु देवताओं को पैदा किया और उन्होंने इनको खदेड़ के भगा दिया। अब नारद जी घूमते हुए कैलाश में आके कहते हैं भोलेनाथ प्रणाम, सती कहाँ है? बोला अपने पिता के घर में यज्ञ में गई है। बोला गई नहीं, वहां प्राण त्याग दिए और आपके गणों का बहुत बड़ा अपमान होगा और वहां से निरादर करके निकाल दिए गए। शंकर जी को क्रोध आया, उन्होंने एक बाल अपनी जटा से धरती पे झटका और वीरभद्र प्रकट हो गया, कहा आ गया जो हे भोलेनाथ। बोला दक्ष यज्ञ में जाओ और दक्ष यज्ञ में जाके और यज्ञ में जो उपद्रव हुआ उसको शांत करो। अब वीरभद्र अन्य सारे गणों को लेके रवाना हुआ है, भृगुवंशी ब्राह्मण भृगु स्वयं और दूसरे देवता यज्ञ की आहुति डालने के लिए तैयार हुए हैं, तो अंधकार छा गया। बोला सूर्य तो अभी अभी उगा है, इस वक्त प्राचीन बरहित धरती के ऊपर राज कर रहा है, कोई चोर डाकू आ नहीं सकते हैं, तो यह अंधकार कहां से हो गया? तब सती की माता ने कहा कि यह तो शंकर का कोप है जो अंधकार के रूप में आ रहा है। और उस वक्त वीरभद्र ने आते ही पहले दक्ष को पकड़ा और जो छुरी लकड़ी की थी उससे दक्ष का गर्दन काटा और गर्दन को दक्षिण अग्नि में स्वाह किया, और उसके बाद भृगु की दाढ़ी, भग का दांत, पूषा की आंख और फिर किसी देवता का हाथ, किसी का पांव तोड़ा और सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। अब सारे देवता टूटे हाथ पांव से ब्रह्मा जी के पास जाके प्रार्थना करते हैं, हे पितामह, हम बड़े दुखी हैं, देखो हमारा हाथ, हमारा पांव, यज्ञ के अंदर हमारा हाल ये हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ये हमारे को भी यज्ञ का निमंत्रण आया था, लेकिन हमको मालूम था कि शंकर को नहीं बुलाया है, वहां उपद्रव होगा इसलिए हम नहीं गए, तो सब दावतों में जाना भी नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहता है कैसे मुंह उठाए सब जगह नहीं जाना चाहिए, और फिर देवताओं आपको मालूम नहीं है कि जहां शंकर जी का अपमान, जहां यज्ञ में जगह नहीं है वहां गए क्यों आप? आपको इतना पता भी नहीं है यज्ञ की मर्यादा में जहां हमारा स्थान नहीं हो, शंकर नहीं हो, तो आप गए क्यों? गए तो ये आपका हाल हुआ। आप बोला अब क्या करें ब्रह्मा जी, कुछ तो करो। बोला चलो शंकर जी से क्षमा याचना मांगते हैं। ब्रह्मा जी देवताओं को लेके कैलाश में आए, देखा शंकर क्रोध में नहीं है, ज्ञान मुद्रा में चतुर कुमारों को उपदेश दे रहे हैं और सामने नारद आदि बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, देवताओं ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा हे परम वैष्णव महादेव, ये देवता अपनी की हुई गलती को मानते हैं, आपसे क्षमा याचना मांगने के लिए आए हैं, आप कृपा करके इनके दोष को क्षमा कर दीजिए और इनके अंग भंग हुए हैं इनको ठीक कर दीजिए। शंकर जी ने कहा ये तो हमारे भाई है, मैं महादेव हूं, मेरे देव हैं, इन्होंने कौन सा अपराध किया है, ये सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो गए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं दक्ष का यज्ञ संपन्न कराइए और आपके सुसर का सर काट दिया गया है, आप उसको भी ठीक कीजिए। शंकर जी ने कहा चलो। ये परम वैष्णव जिसकी पत्नी का मारा गया, जिसकी पत्नी ने प्राण त्यागे जिस यज्ञ में, जिस यज्ञ में उसके गणों का अपमान किया गया, लेकिन जब सन्मान्य व्यक्ति ब्रह्मा देवताओं के साथ मनाने के लिए आए तो कोई पूछ नहीं किया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चलो चलते। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि संसार में कहीं दुख सुख होता है, कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन चार अच्छे आदमी मनाने आए तो पुरानी बात को भूल जाना चाहिए। और शंकर जी चल के आए हैं, कहा आप क्या करना है, बोला ये आपका ससुर का सर लगाइए। बोला सर कहाँ है, ले आओ लगाता हूँ। बोला सर तो दक्षिण अग्नि में डाल दिया। बोला उसमें किसका सर डालना था, बोला वो तो बकरे का डालना था। बोला बकरा ले आओ, वो लगा देते हैं, हमारे को तो ये बहुत बड़ा अभ्यास है, ये तो बकरे का, आगे तो हम अपने पुत्र के ऊपर तो हाथी का लगा देते हैं, तो हेड ट्रांसप्लांट में हमारा बहुत बड़ी एक्सपर्ट ही है। बकरे का सर लाया गया और जैसे बकरे का सर दक्ष के सर के ऊपर लगा है, दक्ष ने प्रणाम करके क्षमा याचना मांगी है, उस वक्त भगवान विष्णु प्रकट हो गए। इसलिए कनखल में आज भी कहते हैं कि ये वो स्थान है जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक समय में खड़े हो गए थे। अब भगवान विष्णु आ गए, दक्ष ठीक हो गया, तो कहा भृगु जी की दाढ़ी, बोला बकरे के बाल लगा दो, ससुराल वाला है चपक जाएंगे। बोला आंखें और दांत इनके, बोला दांत की जरूरत नहीं है, ये जब यजमान खिलाएगा तब पेट भर जाएगा, नहीं तो चने का आटा खाए, और आंख वाले देवता को खाना ही रहने दो, सूर्य निकलेगा तब प्रकाश हो जाएगा। अब सब ऋषियों ने कहा कि कृपा करके यज्ञ को पूर्ण करो। बोला भगवान विष्णु यज्ञपति आ गए, वैष्णव से क्षमा याचना मान गई, मांग ली, ए वैष्णव कल्पत्रु है, ये तो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, यह यज्ञ संपन्न होता है। तो सात अध्याय पूरे होते हैं चौथे स्कंद के, जहां यज्ञ में धर्म के काम में किसी वैष्णव के अपराध से सब कुछ निष्फल हो जाता है, लेकिन क्षमा याचना मांगे तो बड़े उदार भगवान के भक्त जब आशीर्वाद करते हैं तब भगवान प्रसन्न होके प्रकट होके कार्य करते हैं। अब कथा आगे आती है कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र हुए और तीन पुत्रियां हुई। पहला इस धरती के ऊपर लड़कियां तीन थी और लड़के दो थे, लड़कियों की संख्या हमेशा बड़ी हो ज्यादा होती थी। आगे देवहूति के नौ पुत्रियां और एक पुत्र हैं। तो दो पुत्रों के नाम है उत्तानपाद छोटा है और बड़े का नाम है प्रियव्रत, और तीन पुत्रियों में आकुटि देवहूति और प्रसूति, ये तीन नाम है। इसमें से आकुटि का विवाह हुआ प्रजापति रुचि के साथ और उनका पुत्र हुआ यज्ञ और दक्षिणा। ये यज्ञ आगे भगवान का अवतार है जिसको स्वयंभू मनु ने गोद ले लिया। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ जिसके बहुत कन्याएं हुई, लेकिन एक सती हुई जिसका विवाह शंकर के साथ हुआ। और तीसरी बेटी देवहूति का विवाह हम वर्णन करके आए, कर्दम मुनि से हुआ और नौ पुत्रियां और एक पुत्र हुए। तो अब बेटों के वंश का वर्णन हो रहा है। बड़ा बेटा प्रियव्रत नारद का शिष्य था, नारद के आश्रम में रह रहा था, राज करने की इच्छा नहीं थी। तो छोटा बेटा उत्तानपाद राजा बना। उत्तानपाद राजा बना तो उसकी मुख्य पहली पटरानी जो बड़ी थी उसका नाम सुनीति था, जिसका एक पुत्र था उसका नाम ध्रुव महाराज था। दूसरी बहुत सुंदर छोटी रानी थी उसका नाम था सुरुचि। सुनीति का मतलब जो नीति पे चले, सुरुचि का मतलब जो मनमानी करे, और सुरुचि का जो बेटा था उसका नाम था उत्तम। उत्तम का मतलब है तत्कालीन, ज्यादा समय नहीं रहे, और ध्रुव का अर्थ है जो अटल हो, कभी हिले नहीं। राजा का अपनी छोटी रानी के साथ बहुत प्रेम था और बड़ी रानी को ज्यादा ध्यान नहीं देता था। राजा अपने सिंहासन पे बैठा था, ध्रुव महाराज 5 वर्ष का अपने पिता की गोद में चढ़ने के लिए आगे बढ़ा, सुरुचि ने खींच के नीचे उतारा और कहा नहीं जा सकते, इस गोद में बैठने के लिए जाओ, भगवान की प्रार्थना करो, तपस्या करो, कहो कि सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न करे, तब इस सिंहासन पे बैठ सकते हो। तो सुरुचि ने अपराध क्या कर दिया, भगवान की भक्ति का अपराध कर दिया। भगवान की सेवा करने के बाद भी किसी के गर्भ में जाना पड़ेगा क्या, तो भगवान की भक्ति का अपमान हो गया। लेकिन ध्रुव को बहुत वो कष्ट हुआ। सांप के ऊपर जैसे पांव आता है, छोटा बच्चा है, क्षत्रिय का पुत्र है, माँ ने जो ये शब्द कहे उसका हृदय जलने लगा, रोने लगा और रोता हुआ अपनी माँ के पास आया। तब तक दासियों ने माँ को समाचार तो सुना ही दिया था। ध्रुव को रोते देखा तो माँ ने कहा, बेटा तेरी माता ने सत्य कहा है, तेरी सोतेली माता ने सत्य कहा है, तुम्हें अगर पिता के सिंहासन पे बैठना है तो भगवान की भक्ति करो। मैं बड़ी रानी हूं लेकिन मेरा सम्मान नहीं है, तुम मेरा पुत्र हो तो तुम राज गद्दी पे नहीं बैठ सकते हो। तो माँ फिर भगवान कहां मिलता है? बोला सब ऋषि वन में जाते हैं, आप भी जाके भगवान को प्राप्त करो। और ध्रुव जैसे ही भगवान को प्राप्त करने का संकल्प करने लगा तो सुनीति ने कहा, बेटा अगर अपमान करने वाली माता के प्रति तुम द्वेष भाव अपने हृदय में ले जाओगे तो भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट नहीं होंगे। उसने अच्छा किया कि तुमको भगवान मिलाने का साधन बता दिया। ये जो सुनीति की शिक्षा है अपने बालक को, बहुत अच्छी शिक्षा है कि किसी के प्रति द्वेष भाव मत रखो, नहीं तो उसका द्वेष तुम्हारे अंदर आ जाएगा। दूसरे की बुराई सोचोगे तो वो बुराई हमारे अंदर आ जाएगी। ध्रुव रास्ते में निकला है, भगवान की प्रेरणा से नारद जी सामने आए। नारद जी परीक्षा लेते हुए कहते हैं, बेटा छोटे 5 वर्ष के हो, जंगल में हिंसक पशु है, कहां जा रहे हो? अरे क्या, तेरी मासी ने कह दिया, तेरे पिता को मैं समझा दूंगा, गोद में बिठा दूंगा, चलो। ध्रुव महाराज कहते हैं, मैंने सुना है नारद आप भगवान मिलाते हो, मुझे संसार में क्यों फंसाना चाहते हो? अगर भगवान मिला सकते हो तो बताइए, नहीं तो मेरे को मेरे मार्ग में जाने दीजिए। नारद ने देखा कि दृढ़ संकल्प है ध्रुव का, निश्चित रूप से भगवान को पालेगा। तो नारद जी ने प्रसन्न होकर उसको 12 अक्षर का ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया। कहा, बेटा आगे जाओ जमुना जी के तट पे, ये जहां मधुबन है यहां तुम तपस्या करो। अब गुरु भगवान ने भेज दिया ध्रुव महाराज के पास और गुरु ने भगवान मिलाने का साधन बता दिया। और ध्रुव महाराज की तपस्या ऐसी घोर है, पहले महीने में तो फल फूल खाया, दूसरे महीने में पानी पिया, पत्ते खाए, तीसरे महीने में केवल पानी पिया वो भी सप्ताह के बाद, चौथे महीने तक तो सांस ले, फिर सांस बंद करके एक बार ले, छठे महीने की ये तपस्या एक पांव पे देखी तो ध्रुव सांस ले तो सारी सृष्टि सांस ले, ध्रुव सांस बंद करे तो सबका सांस बंद हो जाए। तो उसने अपने आप को भगवान से एक दृष्टि से मिला दिया, वैष्टि समष्टि के समन्वय हो गया, सभी देवता खा भगवान, बहुत बड़ा संकट हो गया है, इसकी तपस्या के कारण हवा चलना बंद हो रही है, सांस लेता है तो चलती है। भगवान मुस्कुराए कि ऐसा मेरा महान भागवत भक्त है, मैं उसको दर्शन देने के लिए गरुड़ के ऊपर चढ़ के जा रहा हूं, आपके लोगों के अंदर से होता हुआ जाऊं, पता लगे कि मेरे भक्त तपस्या करते हैं उनके ऊपर प्रसन्न होता हूं। भगवान गरुड़ के ऊपर चल के आए हैं मधुबन में और खड़े हैं गरुड़ के ऊपर हाथ रख के कंधे पे, लेकिन ध्रुव तो आंखें नहीं खोल रहा है। भगवान ने देखा, मैं इसको दर्शन देने आया हूं, ये आंखें नहीं खोल रहा है, कारण क्या? अरे हृदय में भगवान का दर्शन कर रहा है। भगवान ने अंदर से अपनी छवि को छुपा दिया, ध्रुव छटपटा के आंखें खोली और सामने उसी को देखा जो अंदर में देख रहा था। अब प्रणाम किया लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, बोल नहीं पा रहा है। भगवान ने अपने हाथ में जो शंख था उसको ऐसे गले को छुआया है और ध्रुव महाराज के मुख से धारावाहिक प्रार्थना निकलने लगी है कि भगवान दया सागर हो, कहां हम योग्य हैं राजपुत्र, कहां आप करुणा निधि यहां आए हैं मुझे दर्शन देने के लिए। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव कुछ मांग ले। बोला, मैं अपने पिता में से बड़े राज मांगने की मूर्खता करके आया था, लेकिन अब आपका दर्शन हो गया तो अब मेरी मांगने की कुछ इच्छा नहीं है, अब तो राजपाट मुझे टूटे हुए कांच के टुकड़े लग रहे हैं और आपका दर्शन मेरे को हीरा मिल गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं ध्रुव महाराज, तुम अभी जाके अपने पिता का 60,000 साल तक राज करना और उसके बाद तुम्हारे लिए मैंने ध्रुव लोक बनाया है, प्रलय काल में समाप्त नहीं होगा, गंगा तेरे लोक में आके गिरेगी, चारों ओर सप्त ऋषियों का संग मिलेगा। ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन करके वापस लौट रहे हैं, उत्तानपाद महाराज ने बहुत बड़ा स्वागत किया है और राजपाट ध्रुव महाराज को दिया है। और तब उत्थान महाराज महाराज तपस्या करने चले गए हैं। समय थोड़ा गुजरा है, उत्तम को यक्षों ने मार दिया है, सुरुचि का उसकी जुदाई में मृत्यु हो गई और ध्रुव महाराज को बहुत क्रोध आया, यक्षों के साथ युद्ध किया है, यक्षों ने माया फैलाई, ऋषियों ने ध्रुव महाराज की सहायता की है और ध्रुव जब संहार करने लगा यक्षों का तो स्वयंभू मनु आगे कहते हैं, पोता बेटा एक यक्ष ने आपके भाई को मारा, तुम यक्षों के वंश का क्यों नाश कर रहे हो? भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं जो बड़ों का आदर करता है, समान से मैत्री करता है और छोटों के ऊपर कृपा करता है। ध्रुव महाराज मान गए, युद्ध समाप्त किया और यक्षों का राजा कुबेर आया, बहुत प्रसन्न हुआ, ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दिया। यहाँ भागवत के अंतर्गत ये शिक्षा बार बार आएगी, भगवान के दर्शन करने के बाद भी क्रोध आया ध्रुव महाराज को, लेकिन जैसे ही स्वयंभू मनु भागवत का शिक्षा दर्शन हुआ और संग मिला तो फिर वापस ध्रुव राज आके अपना राज अपने बेटे को देना चाहता, लेकिन बेटा उत्कल राज करने को तैयार नहीं था। ध्रुव ने अपने दूसरे पुत्र को राज दिया। ध्रुव तपस्या करने के लिए गंगा जी के तट पे गया, जहाँ ऋषिकेश में ध्रुव का एक मंदिर है आज भी, जहाँ लक्ष्मण झूला है वहां मंदिर है, वहां तपस्या ध्रुव कर रहे थे। गंगा बहुत ध्वनि करके चल रही थी तो ध्रुव वहां से उठे। गंगा ने कहा, बेटा ऐसा अच्छा भक्त हो, आप भजन करते हो मुझे अच्छा लगता है, कहाँ जा रहे हो? बोला, बहुत ध्वनि हो रही है, भजन में विघ्न पड़ रहा है। और गंगा जी ने कहा, बेटा यहाँ अब शांत रहूंगी। आज भी उस स्थान के ऊपर गंगा बहुत शांत है, लक्ष्मण झूले के पास। फिर ध्रुव महाराज आगे बद्री का आश्रम गए हैं, वहां रोज स्नान करते हैं वो अलकनंदा में और भक्तों का संग करते हैं। अब एक दिन वैकुंठ से विमान आया और विमान सुनंदा ने कहा कि ध्रुव महाराज आपके लिए भगवान ने विमान भेजा है, आप वैकुंठ चलो। ध्रुव महाराज ने अलकनंदा में स्नान किया, ऋषियों को प्रणाम किया, परिक्रमा की और फिर विमान की ओर आगे बढ़े हैं तो मृत्यु आके खड़ा हो गया। कहा, ये मृत्यु लोग हैं ध्रुव महाराज, आप हमारा स्पर्श करके फिर जाइए। ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सर के ऊपर पांव रख के इसी शरीर में विमान के ऊपर आरूढ़ हुए हैं, विमान चला है। तो ध्रुव महाराज ने कहा, भैया रोको, सुनंदा नंद आप विमान को रोको, क्या क्या बात है, क्या चाहिए? बोला, मेरी मां सुनीति जिसने मेरे को भागवत धर्म के पालन करने के लिए भगवान मिलने का रास्ता बताया था, उसको मैं वैकुंठ साथ लेके चलूंगा। ओ चालक कहते हैं, पायलट नंद के देखो आगे वाली विमान में तुम्हारी माता जा रही है। दो शिक्षाएं बहुत अच्छी मिलती हैं। कोई भक्त आपको भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा दे, आपकी भक्ति में भगवान मिल जाए तो भी उस भक्त को किसी कारण से रह जाए तो भगवान को याद दिलाना कि इसकी कृपा से मेरे को आपकी भक्ति मिली। और इस श्लोकों के एक तात्पर्य में प्रभुपाद ने इतनी निम्रता का भाव लिख के शास्त्र के अंदर प्रमाणित कर दिया है, शास्त्र में लिखा हुआ है। भागवत में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैं अब वृद्ध हो गया हूं, आज 75-76 साल से ऊपर हो गया है, जब चौथा स्कंद कर रहे थे अनुवाद, तो अब अंत समय पता नहीं भगवान की मुझे याद आए ना आए, लेकिन ध्रुव की तरह कोई शिष्य भगवत धाम जाते हुए मेरी याद करे और मेरे को इस तरह इस व्याज से भगवान की धाम की प्राप्ति हो तो मेरा सौभाग्य मानूंगा। प्रभुपाद का ये तात्पर्य उनकी निम्रता का सूचक है। यहां ध्रुव महाराज भगवत धाम जाते हैं। इसके बाद ध्रुव वंश में आगे एक महाराज अंग हुए हैं जिनको कोई पुत्र संतान नहीं था, तो उन्होंने और उनको पुत्र संतान नहीं था इसलिए उनके यज्ञ में कोई देवता नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा, महाराज आपका इस जन्म का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन पुत्र संतान के लिए हम यज्ञ करते हैं, आपका पुत्र हो जाएगा। तो पुत्र हुआ, लेकिन पुत्र हुआ वेण, जिनका नाना था काल, वो असुर था, नाना ननियाल उसका असुर था, इसलिए छोटा बच्चा था, बड़ा बदमाश था, लड़कों को मार देता था, पशुओं को मार देता था। पिता ने समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वेण समझा नहीं। तो पिताजी कहते हैं, अच्छा है कि किसी ने पुण्य किया होगा इसलिए उसको इस जन्म में कोई दुष्ट पुत्र नहीं पैदा हुआ, नहीं तो दुष्ट पुत्र का दुख न पुत्र होने से ज्यादा भारी होता है। पहले पुत्र न होने का दुख था और अब दुष्ट पुत्र का दुख तो उससे भी ज्यादा है। इससे तो अच्छा है कि कोई तपस्या, किसी को पुत्र नहीं है तो समझ लेके उसने अच्छी तपस्या की थी। रात को वैराग हुआ, राजपाठ को ऐसे ही छोड़ के महाराज चले गए। अब सुनीति मां जो थी वेण की, उसने कहा मेरे बेटे को राज दो। ऋषियों ने कहा है तो ये बहुत बड़ा क्रूर बदमाश, लेकिन जब तक इसकी क्रूरता प्रकट न हो तब तक तो इसको राज तिलक किया जाए। ऋषियों ने राज तिलक किया, वेण राजा बना और कहा कि धर्म के सारे काम बंद कर दो, यज्ञ कराना बंद कर दो, गौशालाएं बंद कर दो, सत्संग बंद कर दो, ब्राह्मणों के यज्ञ आहुतियां बंद कर दो। अरे तो सब ऋषियों ने कहा तुमको राजा बनाया था धर्म के पालन के लिए और तुम ये सब क्यों खर्च बंद करा रहे हो? तो कहता है आप को मालूम नहीं है राजा के अंदर विष्णु का आवेश होता है, तो मैं राजा हूं ना, तो विष्णु है ना मुझ में, तो आप तो वैशा जैसे हो, मैं भगवान हूं मुझे छोड़ के और किसी भगवान की पूजा करते हो। ऋषियों को वेण की इस धृष्टता के ऊपर क्रोध आया और हुंकार की और वेण का प्राण निकल गया। तो ऋषि जो राज दे सकते हैं वो राज ले भी सकते थे। राज ऋषियों ने, वेण का शरीर छूट गया, वेण के शरीर को उसकी माता सुनीति ने सुगंधित तेल में सुरक्षित रखा, अराजकता फैलने लगी। ऋषियों ने कहा हमको तो राज नहीं करना है, ध्रुव के वंश का भी लुप्त नहीं होना चाहिए। तो ध्रुव के वंश का लुप्त नहीं होना चाहिए तो वेण के शरीर का मंथन करने लगे कि इसी से हम राजा पैदा करेंगे। और उनके पास विद्या थी, अधो भाग नीचे के टांगों का मंथन किया तो काला कलूटा एक पुरुष निकला, कहा मैं कहां बैठूं? निषिद्ध, बोला बैठ जाओ, निषाद उसका नाम हो गया। बोला वन प्रदेश में जाके राज करो। तो ये निषाद है जो जंगल में रहते हैं, चोर है, डाकू है, लुटेरे है, शिकारी है, ये निषाद राज। जो वेण के अंदर नाने की तरफ का जो पाप का भाग था वो निषाद के रूप में प्रकट हो गया। फिर ऋषियों ने मंत्रों से वेण के सीधे हाथ का मंथन किया तो पृथु महाराज प्रकट हुए, जो भगवान के अंश अवतार है विष्णु के। और वाम भाग से अर्ची लक्ष्मी का अवतार प्रकट हुआ। उस वक्त सारे देवता प्रकट हुए, पृथु महाराज को रथ दिया, बाण दिए और धनुष दिया, राजा के जो भी सामग्री है वो भेंट में दी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आए हुए थे, जो गंधर्व आए हुए थे, जो चारण आए हुए थे, वो पृथु के गुणगान करने लगे। पृथु महाराज ने कहा अब गुणगान मत करो, जब मैं कुछ करूं तब करना, अब तो मैं राज तिलक भी नहीं हुआ है। पृथु महाराज का राज तिलक अर्ची के साथ हुआ है, पृथु महाराज का राज हुआ तो प्रजा महाराज के सामने हाथ जोड़ के कहती है महाराज हम हल जोतते हैं, बीज डालते हैं, पृथ्वी से अन्न उत्पाद नहीं हो रहा है, देखो हमारे पेट पीठ को लग गए हैं, भूख मर रहे हैं। पृथु महाराज रथ के ऊपर आरूढ़ होके बाण हाथ में लिया है, धनुष के ऊपर चढ़ाया है और पृथ्वी के ऊपर अनुसंधान किया है। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके भागने लगी, पृथु का रथ पीछे भागा है। पीछे मुड़ के गाय कहती है महाराज आप भूपति भूपाल पृथ्वी का रक्षक करने वाले मेरे को मारना क्यों चाहते हो? पृथु महाराज कहती है मेरी प्रजा को भोजन क्यों नहीं दे रहे हो? तब पृथ्वी हाथ जोड़ के कहती है महाराज आपसे पहले वेण जैसे क्रूर राजाओं के कारण मेरे बीज सारे लुप्त हो गए हैं, अब वो प्रकट आपको करने हैं तो मैं गाय हूं, आप कोई योग्य बछड़ा बनाओ, मैं सबके लिए भोजन के बीज प्राप्त करा दूंगी। तो यहां एक संदेश मिलता है, जब राजा कोई दुष्ट होता है, क्रूर होता है तो हर चीज महंगी होने लगती है और लोगों के पास अभाव इतना हो जाता है कि शांति नहीं रहती। तो पृथ्वी माता के लिए अब पृथु महाराज ने इंद्र को बछड़ा बना के देवताओं के भोजन की व्यवस्था की, स्वयंभू मनु को बछड़ा बना के मानव की व्यवस्था की, और फिर वासुकी को बछड़ा बनाए सर्प के लिए, और फिर मृग के शेर को बछड़ा बना के पशुओं के लिए, सारी प्रजा के इच्छाओं की पूर्ति करने का कार्य किया। पृथु महाराज पहला है जिन्होंने धरती को समतल किया, वर्ण आश्रम की व्यवस्था की, ब्राह्मण विद्या पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, क्षत्रिय रक्षा करने से, वैश्य वाणिज्य गौरक्षा और कृषि करने से और चतुर्थ वर्ण सेवा करने से एक जगह रहकर अपना निर्वाह करे, शहर बसाए। उससे पहले लोग खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। पृथ्वी महाराज ने पहली बार नगर बसाए, शहर बसाए, पृथ्वी को समतल किया, वर्णाश्रम व्यवस्था किया और फिर 100 यज्ञ अश्वमेध करने का अनुष्ठान लेके बैठ गए। 99 यज्ञ पूरे हो गए। जब 99 यज्ञ पूरे हो गए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, पृथ्वी महाराज के 99 यज्ञ पूरे होने लगे तो इंद्र को अपने आसन को हिलता हुआ दिखाई दिया और तब इंद्र साधु के वेश में घोड़ा चुराने आया। तो पृथु के पुत्र अश्वजीत ने इंद्र को पकड़ लिया, इंद्र भाग गया, घोड़ा वापस आया। दोबारा जब इंद्र आया तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होके कहा, क्या करोगे सो यज्ञ करके? आप तो भगवान के अवतार हो, आपको इंद्र तो बनना नहीं है। इंद्र बनने के लिए 100 यज्ञ करना जरूरी होता है, आप यज्ञ बंद करो। अब इंद्र साधु के रूप में आता है, भविष्य में साधु के रूप में चोर डाकू लोगों के घरों में आके चोरियां करने लगेंगे तो ये साधु की बदनामी होगी। पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन किया, यज्ञ को विराम दे दिया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, इंद्र आए, इंद्र ने आके क्षमा याचना मांगी। पृथु ने इंद्र को गले लगा लिया और भगवान विष्णु प्रकट हुए। अब भगवान विष्णु के और पृथु के बीच में जो वार्तालाप हुई और फिर पृथु अपने पुत्रों को राज दे के गया, ये चौथे स्कंद का कल वर्णन करेंगे। मेरे ख्याल में समय अधिक हो रहा है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरे कृष्ण कृष्ण।